नमस्कार भारत, आज है 10 जनवरी और दिन बुधवार और मैं हूं कुलदीप मिश्र। तनाव घटाने के लिए दो साल बाद सैन्य बातचीत पर राजी हुए उत्तर और दक्षिण कोरिया। असम में नागरिकता रजिस्टर की पहली सूची के बाद क्यों घबराए हुए हैं ट्रांसजेंडर्स?
बहुत सारे ट्रांसजेंडर तो ऐसे भी हैं जिनको इस बारे में मालूम भी नहीं था, वो अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो इसलिए अब उनके अंदर भी एक डर समा गया है कि उनको भी भारतीय समझा जाएगा या उनको भी बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
और कश्मीर में पैलेट गन की चपेट में आकर आंख खोने वाली बच्ची ने पास किया 10वीं का इम्तिहान। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, रजनीश कुमार से। सीमा पर तनाव कम करने के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया सैन्य बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। उत्तर कोरिया अगले महीने दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक के लिए एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी भेजेगा। हालांकि उत्तर कोरिया युद्ध में अलग हुए परिवारों को साथ आने देने पर सहमत नहीं हुआ है। अमरीका ने दोनों देशों के बीच इस नई प्रगति का स्वागत किया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करना ही उद्देश्य है। हालांकि उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण को खारिज कर दिया है। कैलिफोर्निया में पुलिस का कहना है कि बाढ़ और कीचड़ में धंसने से कम 13 लोगों की मौत हुई है। अमरीकी मीडिया के अनुसार भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने रूढ़िवादी वेबसाइट ब्रेइटबर्ट न्यूज के कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप पर आई एक किताब में बैनन ने उनके बेटे की निष्ठा पर सवाल उठाया था। कथित रूप से किताब में बैनन ने कहा है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की न्यूयॉर्क में एक रूसी वकील के साथ मुलाकात विश्वासघात की तरह थी। ब्रेइटबर्ट के पूर्व प्रवक्ता कुर्ट बारडेला ने कहा,
It wouldn't shock me at all if he tries to reinvent himself, tries to start his own venture or his own platform.
अगर वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को खुद का कारोबार खड़ा करना चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। ये थे ब्रेइटबर्ट के पूर्व प्रवक्ता कुर्ट बारडेला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तानी शहर क्वेटा में स्थानीय असेंबली के पास एक धमाका हुआ है। इसमें कम 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 4 पुलिस अधिकारी हैं। बलूचिस्तान में जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच यह धमाका हुआ है। इससे पहले बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। आइवरी कोस्ट के दूसरे सबसे बड़े शहर बोउक में भारी गोलीबारी हुई है। यह संघर्ष सैन्य ठिकाने के करीब हुआ है। इसमें सेना के विरोधी गुट के लोग शामिल हैं। वेतन और प्रमोशन को लेकर इस शहर में पिछले साल भी विद्रोह हुआ था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने स्विट्जरलैंड के दावोस जाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप इस दौरे में व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 4 दिवसीय सम्मेलन 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। अमरीकी विदेश मंत्री ने क्यूबा में 20 से ज्यादा अमरीकी राजनयिकों की सेहत से जुड़ी समस्याओं की एक नई जांच का आदेश दिया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए क्यूबाई सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि क्यूबा अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहा है। बीबीसी के एक संवाददाता का कहना है कि रिक्स टिलरसन द्वारा जांच का नया आदेश दोनों देशों के बीच फिर से खराब होते रिश्तों का परिचायक है। एक ईरानी सांसद ने कहा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शन में जितनी गिरफ्तारियों की बात कही गई थी, उससे कहीं ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच खबर आ रही है कि पुलिस हिरासत में कई मौतें भी हुई हैं। महमूद सदेगी ने कहा कि 3,400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1,000 के करीब लोगों को गिरफ्तारी की 1,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। उत्तर कोरिया के रुख में अचानक एक बदलाव आया है जिसे कुछ जानकार नाटकीय भी मान रहे हैं। एक अहम घटनाक्रम में उत्तर और दक्षिण कोरिया सीमा पर तनाव कम करने के मकसद से सैन्य बातचीत करने पर राजी हो गए हैं। इसके पहले ये भी तय हो चुका है कि अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले शीत ओलंपिक खेलों के लिए उत्तर कोरिया भी एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। दोनों देशों के बीच बर्फ पिघली है या नहीं ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जो भी प्रगति हुई है उसका अमरीका ने थोड़ी सावधानी के साथ स्वागत भी कर दिया है। ब्यौरा सुनिए रजनीश कुमार से।
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 19 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए कहा था कि अगर उत्तर कोरिया नहीं सुधरा तो अमरीका के पास उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के बारे में कहा था कि रॉकेटमैन खुदकुशी के मिशन पर है। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते तक किम जोंग उन भी परमाणु युद्ध की बात कर रहे थे। मंगलवार को दुनिया हैरान रह गई जब दक्षिण कोरिया के साथ उत्तर कोरिया सैन्य बातचीत के लिए राजी हो गया। दोनों देशों के बीच दो साल बाद मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसी बैठक में सैन्य बातचीत पर सहमति बनी। अगले महीने उत्तर कोरिया विंटर ओलंपिक के लिए दक्षिण कोरिया में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भेजेगा। दोनों देशों में हुई बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण कोरियाई मंत्री चाओ मयुंग ग्यो ने कहा, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया संवाद और परामर्श के जरिए समस्याओं को सुलझाने पर राजी हो गए हैं। इसके तहत दोनों देशों ने फैसला किया है कि उच्च स्तरीय बातचीत के साथ कई स्तरों पर संवाद को बढ़ाया जाएगा। ये थे दक्षिण कोरियाई मंत्री के शब्द। दूसरी तरफ उत्तर कोरियाई मंत्री री सोन गुओन ने कहा, उत्तर कोरिया ने उच्च स्तरीय अधिकारियों, ओलंपिक प्रतिनिधियों, एथलीटों के साथ दर्शकों और रिपोर्टरों को दक्षिण कोरिया भेजने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया ने हमें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर सहमति जताई है। ये थे उत्तर कोरियाई मंत्री री सोन गुओन के शब्द। हालांकि दक्षिण कोरिया के उस प्रस्ताव पर उत्तर कोरिया राजी नहीं हुआ जिसमें कहा गया था कि कोरियाई युद्ध में अलग हुए परिवारों को मिलने की अनुमति दी जाए। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच की बातचीत का स्वागत करने में सतर्कता दिखाई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसका स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने कहा कि किसी भी अनहोनी को टालने के लिए यह एक अच्छा कदम है। उत्तर कोरिया की आक्रामकता को रोकने के लिए अमरीका चीन की तरफ देखता रहा है। ट्रंप उत्तर कोरिया को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कई बार सख्ती बरतने की अपील कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच शुरू ही बातचीत का चीन ने भी स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत से चीन खुश है। हम एक पड़ोसी होने के नाते कई बार कह चुके हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए चीन हर सकारात्मक कदम का समर्थन करेगा। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। सोल में बीबीसी के रूपर्ट विंगफील्ड हायस का कहना है कि महीनों से जारी तनाव के बीच यह अचानक और नाटकीय घटनाक्रम है। दक्षिण कोरिया में कुछ ही लोग इस बात को मान रहे हैं कि यह उत्तर कोरिया के रुख में सकारात्मक बदलाव है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन उत्तर कोरिया से ठोस बातचीत के पक्षधर हैं और वो अमरीका के खास सहयोगी के तौर पर भरोसे को भी कम नहीं करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच आखिर बातचीत 2015 में हुई थी।
रजनीश कुमार से ब्यौरा सुन रहे थे आप। अब बात पाकिस्तान की, जहां से खासी तादाद में मरीज भारत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इलाज के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा आवेदन कई मामलों में नामंजूर कर दिए जाते हैं। इसीलिए कई बार कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से सीधे ट्विटर पर दरख्वास्त करते दिखते हैं। पिछले कुछ अरसे में भारत ने दूसरे देशों से आने वाले मरीजों के लिए ई वीज़ा को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान इन देशों में शामिल नहीं है। जबकि आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो दूसरे देशों के मुकाबले पाकिस्तान से इलाज के लिए आने वाले लोगों से भारत को ज़्यादा आमदनी होती है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट।
डॉक्टर तैमूरुल हसन कैंसर के मरीज हैं। कुछ साल पहले दिल्ली में इलाज करवाने के बाद उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर कैंसर उन्हें जकड़ रहा है। 6 महीने के इंतजार के बाद डॉक्टर तैमूर को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्विटर अकाउंट के जरिए भारत आने का वीजा मिल गया है।
हमारे डॉक्टर्स के लिए भी परेशानी होती है, वो भी परेशान होते हैं हमारे लिए कि हमारे पेशेंट्स जो है ना वो सफर कर रहे हैं, और उनको भी ये होता है कि अगर पेशेंट हमारे पास लेट आएगा, उसकी डिजीज़ ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, तो हमें उसको डिजीज़ को ट्रीट करने में दुश्वारी होगी।
डॉक्टर तैमूर वाघाटारी गेट से भारत पहुंच रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में नरमी होती है तब सरहद पर आने जाने वालों की काफ़ी हलचल रहती है, लेकिन कम वीज़ा मिलने का मतलब है लाहौर अमृतसर बॉर्डर पर मुसाफिरों का कम होना। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक साल 2015-16 में सिर्फ 1921 पाकिस्तानी मरीजों को ही वीज़ा दिया गया था। ये संख्या दूसरे देशों से आने वाले मरीजों के मुकाबले में काफ़ी कम है। सर्वे बताता है कि भारत पाकिस्तान के मरीजों के जरिए प्रति मरीज सबसे ज्यादा औसत कमाई कर रहा है, लेकिन इससे चीज़ें उनके लिए आसान नहीं हो जाती। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बताया,
यहाँ से करीबन 500 वीज़ा इंडियन हाई कमीशन इशू करता था महीने के, या ज़्यादातर जिगर की पैवंदकारी, लिवर ट्रांसप्लांट और बच्चों के हार्ट के जो मामलात थे, ये उन्होंने रोक दिया, और अब वो पिक एंड चूज ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा करती हैं और वो ट्विटर का तरीकेकार है।
पाकिस्तान में भारत के नए हाई कमिश्नर अजय बिसारिया के मुताबिक मेडिकल टूरिज्म उन कामों में से एक है जिसे वो अपने करियर काल के दौरान बढ़ावा देना चाहते हैं।
Humanitarian aspects of the relationship being the people-centric is very important to us, and this is one dimension of it. The medical visas to help people in distress, to help people in emergencies, and certainly this is an aspect which we hope to promote and expand.
इस दिलासे के बावजूद लिवर, दिल और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे पाकिस्तानी मरीज कश्मकश में हैं। डॉक्टर तैमूर खुशकिस्मत हैं कि वो ट्विटर पर सुषमा स्वराज के दखल के चलते वक्त रहते दिल्ली में अपना इलाज करवा पाए, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से आखिर कितने मरीज वीजा पा सकेंगे। शुमाला जाफरी, BBC, इस्लामाबाद।
अब बात भारत के असम की। असम में गैर कानूनी नागरिकों की पहचान के लिए अपडेट की जा रही राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC की पहली ड्राफ्ट सूची में कई ट्रांसजेंडर्स के नाम नहीं आए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने अपनी नागरिकता गंवाने का डर खड़ा हो गया है। गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में इन दिनों खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राज्य में अपडेट की जा रही NRC में अधिकतर ट्रांसजेंडरों के नाम दर्ज नहीं हुए हैं। अब इन ट्रांसजेंडरों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी नागरिकता ही न चली जाए। ट्रांसजेंडर, जिन्हें हम किन्नर भी कहते हैं, इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनको परिवार वालों ने घर से निकाल दिया है। ऐसे में इनके पास अपनी नागरिकता से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। लिहाजा कई ट्रांसजेंडर, खासकर जो मुसलमान या फिर बंगाली समुदाय से हैं, वो NRC को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। असम में 5,400 से अधिक ट्रांसजेंडर हैं। इन ट्रांसजेंडरों की एसोसिएशन से जुड़ी स्वाति विधान बरुआ ने BBC से कहा,
मैंने बहुत सारे ट्रांसजेंडरों के से बात भी किया है और बहुत सारे गुरुओं से भी मैंने बात किया है, नाम नहीं आ पाए हैं उस चीज में। और बहुत सारे ट्रांसजेंडर तो ऐसे भी हैं जिनको इस बारे में मालूम भी नहीं था, वो अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो इसलिए अब उनके अंदर भी एक डर समा गया है कि उनको भी भारतीय समझा जाएगा या उनको भी बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
NRC अपडेट का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, लिहाजा जिन लोगों के नाम पहली सूची में नहीं आए हैं, सरकार उनके दस्तावेजों की वेरिफिकेशन कर रही है ताकि अंतिम सूची में सभी भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज किए जा सकें। लेकिन इन ट्रांसजेंडरों में अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन ही नहीं किया। अपने परिवार से अलग हो चुकी गुवाहाटी नूनमाटी इलाके की 29 साल की ट्रांसजेंडर नीतूमणि दत्ता कहती है,
मेरा नाम एनआरसी में नहीं आया, लेकिन क्या है अभी तो मैं घर से तो निकलने से बहुत साल हो गया, वोट देती हूँ लेकिन मेल होके देती हूँ ना, मेरा घर से जो वोट का नाम आता है मेरा नाम मेल में आता है, मैं ये चाहती हूँ मेरा तो आदर्श सेंटर में नाम आना चाहिए, हम लोग का जिंदगी बहुत तरफ है, अभी इतना मेहनत करके हम लोग जी रही हूँ ना, दुआ करो किसी को हम लोग का जैसा जन्म दोबारा किसी को नहीं देते।
असम सरकार ने पिछले 31 दिसंबर की आधी रात को एनआरसी का पहला मसौदा जारी कर दिया था। नागरिकों की इस नई सूची में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने 25 मार्च 1971 के पहले की भारतीय नागरिकता से जुड़े सरकारी दस्तावेज जमा करवाए हैं। एनआरसी अपडेट के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला इन ट्रांसजेंडरों की मदद करने की बात करते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से हमसे संपर्क किया गया है, हम उनसे जल्द ही बात करेंगे। उनके साथ लीगेसी लिंकेज की समस्या है, हम उनके साथ बैठकर जो भी उनकी परेशानी है उन मामलों का हल निकालेंगे। केवल ट्रांसजेंडर ही नहीं, जो वास्तविक भारतीय नागरिक हैं, उनका नाम एनआरसी में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये थे प्रतीक हजेला के शब्द। इस मसौदे की पहली सूची में 1,90,00,000 लोगों के नाम प्रकाशित किए जा चुके हैं, बाकी लोगों के नाम एक संपूर्ण अपडेट एनआरसी प्रकाशित होने पर ही सामने आएंगे। ऐसे में ट्रांसजेंडर समुदाय को सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर मदरसों को बंद करके उन्हें आधुनिक स्कूलों में तब्दील करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है और वहां पढ़ने वाले तमाम बच्चे कट्टरपंथी विचारधारा के चलते चरमपंथी संगठनों से जुड़ जाते हैं। रिजवी के इस बयान पर सरकार की तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मदरसा शिक्षा और राजनीतिक दलों ने इसकी कड़ी निंदा की है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
अयोध्या में राम मंदिर की वकालत करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अब मदरसों को खत्म करने की पहल की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने विस्तार से अपने इस विचार की वजह बताई है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मदरसे कुछ लोगों के कमाने का जरिया हैं, तो मुस्लिम बच्चों की तबाही के केंद्र।
मदरसे ज्यादातर चंदों के ऊपर चलते हैं, ज़कात के ऊपर चलते हैं, तो ये चंदा और ज़कात वसूल करने के लिए मदरसों का जो है वो एक कारोबार चल रहा है, जिसका खमियाजा मुसलमान बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मदरसों से कितने इंजीनियर्स निकले हैं, कितने डॉक्टर्स निकले हैं, कितने आईएएस निकले हैं, कितने पीसीएस निकले हैं। हाँ, कहीं कहीं मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले हैं। वेस्ट बंगाल में कई ऐसे मदरसे हैं जो पकड़े गए जिसमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 58 मदरसे, एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा गया 58 मदरसे जिहादी ग्रुप से लिंक्ड है।
वसीम रिजवी का कहना है कि मदरसों से पढ़ने वाले बच्चों के पास मौलवी बनने या फिर मजदूरी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। मदरसों पर उन्होंने कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने इन आरोपों पर यह कहकर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया कि न तो वसीम रिजवी और न ही उनकी बातों में कोई गंभीरता है। दरअसल वसीम रिजवी इससे पहले भी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की वकालत और बाबरी मस्जिद से दावा वापस लेने की बात करके चर्चा में आ चुके हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह की बातें वो करते ही चर्चा में आने के लिए हैं, लेकिन मदरसों से जुड़े लोगों और शिक्षकों ने उनके इन आरोपों पर सख्त एतराज जताया है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एम ए सिद्दीकी कहते हैं कि मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन उन्हें कट्टरपंथ नहीं सिखाया जाता।
जो क्या नाम है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या और जगह पढ़ रहे हैं मदरसों के अलावा, तो उसमें से कितने इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। मदरसे में तो 7% बच्चे गरीब से गरीब बच्चे जाते हैं, कोई बड़ा आदमी, कोई संपन्न आदमी, मिडिल क्लास आदमी बच्चों को भेजता नहीं मदरसों में। गरीब लोग जो है जो नहीं पढ़ सकते।
वहीं राजनीतिक दलों ने भी वसीम रिजवी की इस पहल को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि इतनी गंभीर बात उन्हें इतनी देर में कैसे पता चली।
वसीम रिजवी को इतनी देर बाद क्यों पता चला, इनको तो बहुत पहले पता चलना चाहिए। ये तो चेयरमैन काफी वर्षों से हैं, किसी भी जगह का या संगठन का मूल्यांकन करना ये गलत है।
बहरहाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वसीम रिजवी के इस पत्र पर क्या संज्ञान लेते हैं ये उनके पत्र पाने के बाद पता लगेगा, लेकिन इतने गंभीर आरोप लगने के बाद मदरसे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
श्रोताओं, आपको याद होगा अक्टूबर 2016 में भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां में पैलेट गन का शिकार होने वाली एक बच्ची की तस्वीरें दिल्ली तक के अखबारों में छपी थीं। 14 साल की इंशा मुश्ताक की दोनों आंखों की रोशनी पैलेट गन के छर्रे लगने की वजह से चली गई थी। लंबे इलाज और कई ऑपरेशंस के बाद उनकी एक आंख कुछ ठीक हुई, अब उन्हें एक आंख से देखने लगा है। कल जम्मू में 10वीं की परीक्षा के नतीजे आए हैं और इंशा ने ये परीक्षा पास कर ली है। वो अब आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। एक रिपोर्ट के साथ माजिद जहांगीर।
इंशा मुश्ताक की आंखों की रोशनी वापस तो नहीं आई है, लेकिन 10वीं जमात की परीक्षा में कामयाबी की कहानी इंशा ने ज़रूर लिखी है। 12 जुलाई 2016 को आंखों में पैलेट लगने के बाद इंशा की ज़िंदगी में अगर कुछ बाकी बचा तो वो अंधेरा है। 2016 में इंशा शुपया में अपने घर के बाहर हो रहे प्रदर्शनों को कमरे की खिड़की से देख रही थी, जिस दौरान सुरक्षा बलों ने पैलेट चलाए थे जो इंशा के चेहरे पर लगे थे और इंशा की जिंदगी अंधेरों में खो गई थी। वर्ष 2016 में हिजब कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत के बाद कश्मीर में 6 महीनों तक भारत विरोधी प्रदर्शनों की लहर चली थी, जिस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पैलेट लगे थे और करीब 80 प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे, जबकि हजारों प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। इंशा के पिता मुश्ताक अहमद, जो कि एक ड्राइवर हैं, अपनी बेटी के रिजल्ट की खबर सुनने के बाद खुशी से सरशार हैं। वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी 10वीं की शिक्षा में पास हो सकती थी।
मुझे उस वक्त कोई भरोसा नहीं था इंशा ऐसे पास करेगा, मुझे उस वक्त कोई उम्मीद थी नहीं, इसलिए मैं इस वक्त खुश था, इस वक्त मेरी बेटी ने 10th पास किया।
इंशा खुद भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने 10वीं की शिक्षा पास की। इंशा
अबू ने बताया, अबू को श्रीनगर से फोन आया, पता नहीं किसी लड़की ने किया, वो भी पता नहीं किसने काम कर दिया, उसी ने सुनाया, उसने बोला उसको इंशा पास हो गई, तो अबू ने मुझे सुनाया रिजल्ट। हाँ, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र।
इंशा के मार्क्स कार्ड में लिखा है क्वालिफाइड बट नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी आप परीक्षा में पास हो गई है लेकिन और भी रियाज की जरूरत है। इंशा के मार्कशीट में मैथ के पर्चे में उन्हें फेल दिखाया गया है, लेकिन इंशा कहती हैं कि उन्होंने मैथ की जगह म्यूजिक का सब्जेक्ट चुना था और परीक्षा के दौरान मैथ का पर्चा नहीं बल्कि म्यूजिक का पर्चा लिखा था। इंशा,
मैथ में मुझे मार्क्स नहीं है, मैथ तो रेपियर दिखा रहा है, बट मुझे मैथ नहीं था सब्जेक्ट, मुझे उसके बदले म्यूजिक है, उसको 85 है।
इंशा से ये पूछने पर कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उनका जवाब था कि अभी उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए इंशा के 3 ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई में हुए थे, लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। पैलेट लगने के बाद इंशा स्कूल भी कभी कभार ही जा पाती थीं और पढ़ाने के लिए स्कूल के टीचर इंशा के घर आ जाते थे। 10वीं की परीक्षा में जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ने इंशा का पर्चा लिखने के लिए 10वीं से कम क्लास में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को रखा गया था, जिनको इंशा डिक्टेट करती थी। इंशा कहती हैं कि उनके कई सारे दोस्तों ने उनके पास होने की खबर सुनने के बाद उन्हें मुबारकबाद दे दी है। कल यानी मंगलवार को कश्मीर जोन के लिए 10वीं के रिजल्ट का ऐलान किया गया। कश्मीर जोन में 62% छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने इंशा को उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। रजनीश कुमार मेरे साथी, मेरे सहयोगी स्टूडियो में प्रमुख अखबारों के साथ मौजूद हैं। रजनीश, क्या कुछ है आज के अखबारों में?
आज के अखबार देखिए तो पहले पन्ने पर भले खबर कल ही आ गई थी, लेकिन जो फिल्म प्रेमी है, जो सिनेमा प्रेमी है, फिल्म सिनेमा घरों में जाते थे तो उन्हें राष्ट्रगान बजाया जाता था और इसे लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहा था, लोग सवाल उठा रहे थे। तो अब इसकी अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है, तो ये खबर लगभग सारे अखबारों में पहले पन्ने पर छपी है। दूसरी एक खबर है कि H-1B वीजा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका इसके नियम में तब्दीली लाएगा और इससे करीब 7 लाख भारतीय प्रभावित होते, उनकी नौकरियां प्रभावित होती। अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि H-1B वीजा में के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, तो ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। दूसरी बात यह है कि चारा घोटाले में सजा पाने के बाद रांची के जिस जेल में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव बंद हैं, उससे पहले 2 लोगों को उस जेल में साजिश के तौर पर कहा जा रहा है कि उनको भेजा गया था, उनके खिलाफ पुलिस ने फर्जी केस दर्ज किया था। दैनिक जागरण ने खबर छापी है, दैनिक जागरण के अनुसार 23 दिसंबर को जब लालू CBI की विशेष अदालत में दोषी करार दिए जाने की तैयारी चल रही थी, तभी फर्जी मुकदमा दर्ज कर मदन यादव और लक्ष्मण कुमार को जेल में RJD प्रमुख के साथ रखने की व्यवस्था की गई। कहा जा रहा है कि ऐसा लालू यादव की सेवा करने के लिए किया गया था, तो इसे लेकर झारखंड में काफ़ी विवाद हो रहा है।
ये खबर दैनिक जागरण ने छापी है।
जनसत्ता की एक खबर है जो कि हम लोग के पेशे से जुड़ी हुई खबर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर थोड़ी बहुत गलती होती है रिपोर्टिंग में तो उस पर कोई मानहानि का केस दर्ज नहीं कर सकता है, इसमें पत्रकारों को इतनी छूट मिलनी चाहिए। मतलब उसने सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी की प्रेस की बोलने की अभिव्यक्ति और आज़ादी पूरी होनी चाहिए और कुछ गलत रिपोर्टिंग होने पर मीडिया को मानहानि के लिए नहीं पकड़ा जाना चाहिए। और कल दिल्ली में एक जो जिग्नेश मेवाणी जो कि युवा दलित नेता हैं, उन्होंने रैली की थी, उस रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान और मनुस्मृति में से किसी एक को चुनना होगा, और उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार जो है वो लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। और एक ये खबर है कि नगर निगम के 3 पद भाजपा के खाते में गए हैं। ये बात है चंडीगढ़ नगर निगम की, तो बीजेपी के लिए वहाँ सरकार नहीं, बीजेपी और अकाली की, लेकिन नगर निगम की 3 सीटें भाजपा ने जीती है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश कुमार अखबारों की समीक्षा के लिए। अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ इंदु पांडे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस ने कल सिडनी में कहा कि वो 2019 में इंग्लैंड में होने वाली एशेज सीरीज के बाद टीम को कोचिंग नहीं देंगे। बेलिस 2015 में कोच नियुक्त हुए थे। और अगर हम टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले ताजा विश्व टेनिस रैंकिंग जारी हो गई है। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने इन रैंकिंग्स में अपना दबदबा बरकरार रखा है और वो पहले स्थान पर बने हुए हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरू होने से पहले ये रैंकिंग काफी मायने रखती है। इस रैंकिंग में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स की बहन वीनस विलियम्स 5वें स्थान पर बरकरार हैं। और हॉकी में न्यूजीलैंड में होने वाले 4 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय हॉकी टीम का चयन किया जा चुका है। इस टीम में गोलकीपर पिया श्रीजेश की 8 महीने बाद वापसी हुई है। घुटने की चोट की वजह से श्रीजेश 2017 के कुछ अहम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे। 17 जनवरी से होने वाली इस टूर्नामेंट में भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के अलावा बेल्जियम और जापान की टीमें हिस्सा लेंगी। गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक को भी टीम में जगह मिली है। टीम की कप्तानी 25 साल के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह करेंगे। और अगर हम बात करें रेसलिंग की तो प्रो रेसलिंग लीग का 3rd सीजन शुरू हो गया है। लीग के पहले ही दिन भारतीय पहलवानी की पहचान और ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुके सुशील कुमार मैट पर अपना जादू बिखेरेंगे। इस साल टूर्नामेंट में 20 ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ऑक्शन में सुशील कुमार को सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। लीग का समापन 26 जनवरी को होगा।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए रजनीश कुमार से।
BBC समाचार। सीमा पर तनाव कम करने के लिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया सैन्य बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। उत्तर कोरिया अगले महीने दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने रूढ़िवादी वेबसाइट ब्रेइटबर्ट न्यूज के कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है। कैलिफोर्निया में पुलिस का कहना है कि बाढ़ और कीचड़ में धंसने से कम 13 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। आइवरी कोस्ट के दूसरे सबसे बड़े शहर बोउके में भारी गोलीबारी हुई है। यह संघर्ष सैन्य ठिकाने के करीब हुआ है। इसमें सेना के विरोधी गुट के लोग शामिल हैं। पाकिस्तान पाकिस्तानी शहर क्वेटा में स्थानीय असेंबली के पास एक धमाका हुआ है। इसमें कम से कम 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 पुलिस अधिकारी हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया शाकिर आलम ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया अभिजीत श्रीवास्तव ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com। नमस्कार।